الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به الرسول مولا سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جو میں نے نازل فرمایا اس پر ایمان لاؤ کہ وہ جو تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرتا ہے اور اس کا انکار کرنے والوں میں پہلے نہ بنو اور میری آیات کو گھٹیا قیمت کے بدلے مت بیچو اور صرف میرا تقوی اختیار کرو۔ معزز سامعین کرام، یہاں بنی اسرائیل کو مخاطب فرمایا جا رہا ہے۔ جیسے میں نے پچھلے بیان میں بھی عرض کیا کہ جو علماء یہود ہیں ان کے پاس تورات کے حوالہ جات اور اس میں وہ ارشادات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، آپ کی بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بے شمار نشانیاں اور وہ پہلو جو ایمانیات سے متعلق ہیں، چونکہ خبر ہمیشہ ایک ہوتی ہے، خبر دو نہیں ہو سکتی، تو احکام میں تبدیلی ہے، لیکن حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک جو اخبار ہے وہ ایک ہی ہے۔ تو شرائطی ایمان جو انہیں اختیار کرنے کا حکم عطا فرمایا گیا اور جو کچھ وہ جانتے تھے اس سارے کا اختیار کرنا تو کجا، بلکہ جب اہل مکہ اعتراضات تلاش کرنا چاہے تو انہیں بھی جو اعتراضات ملے وہ مدینہ منورہ کے جو یہود کے علماء ہیں ان کے پاس۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی اور مدنی زندگی اختیار فرمائی تو یہاں کثیر تعداد جو ہے یہود کی تھی۔ تین بڑے قبائل تو مدینہ منورہ میں قیام کرتے تھے اور قدیم قیام کرتے تھے، باقی قبائل مضافات میں تھے۔ تو وہ اعتراضات کرتے اور حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اعتراض کے حوالے سے بڑی خوبصورت بحث فرمائی ہے ان آیات کریمہ کی تفاصیل میں، کہ چونکہ اعتراض تو از قسم جہالت ہے اور جواب از قسم علم ہے، تو جہالت کا کوئی پہلو یا کوئی اندازہ ایسا نہیں کہ کہیں کوئی سوال داغ دیا جائے، بھلے اس کی تک بنتی ہے یا نہیں بنتی، اب اس کا جواب دینا۔ اب جواب تو دیا جائے از قسم علم ہے، لیکن جو جہالت سے سوال کر رہا ہے کیا اس کی اتنی اہلیت ہے، اتنی وہ سمجھ رکھتا ہے کہ وہ جواب کو بھی سمجھ پائے؟ اسی لیے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں جو بحث رہتی ہے کہ بہتے جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کا جواب بھی اگر دیا جائے تو بھی اس پر بحث ختم نہیں ہوتی، اس لیے کہ اب وہ سوال از قسم جہالت ہے۔ اب اس جہالت نے اتنی صداد قائم رہنے دی ہے کہ وہ جو جواب دیا جا رہا ہے اس علم کو بھی وہ سمجھ سکے، حاصل کر سکے۔ تو یہاں جو بات یا موضوع ہے وہ علماء یہود جو سوال پیدا کرتے تھے، جو اعتراضات پیدا کرتے تھے، خود تو جانتے تھے لیکن عامت الناس چونکہ ناواقف تھی، وہ چاہتے تھے کہ ان کے ذہنوں میں سوال پیدا ہو جائیں اور تاکہ یہ حق تک جو رسائی ہے وہ ان کے لیے ممکن نہ ہو۔ تو اللہ کریم نے انہیں اپنے احسانات یاد دلائے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ اللہ کریم نے انہیں احسانات یاد کرائے۔ اب احسانات میں دونوں پہلو، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، یوسف علیہ السلام والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام والسلام تک جتنے اللہ کے انبیاء گزرے वो बनी इसराइल में से गुजरे। अब दूसरा पहलू जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्बत पर आता है, वो बनी इस्माईल हुए, और जो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्बत से फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, ये वो नस्बत है जो बनी इसराइल कहलाए। चूँकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लकब इसराइल था और इसराइल का लुगवी मानी जो है वो अब्दुल्ला है, अल्लाह का बंदा, और उन पर जो एहसानात हैं दोनों पहलुओं से आप देखें कि जो दीनी हिस्सा है कि कितनी ही कसीर तादाद अल्लाह करीम ने अपने मुकर्रबीन की उनमें मबूस फरमाई, फिर दुनिया को अल्लाह करीम ने सबब पैदा फरमाया, और दुनिया में आलम असबाब में सबब ज़रूरी है, और उन्हें अल्लाह करीम रिज्क अता फरमा रहा है जिसमें वो कोई सबब नहीं कर रहे, तो मनो सलवा उन्हें अता फरमाया गया, और सूरज की तपश में उनके लिए छाँव बादल लिए फिरते हैं, तो ज़रूरियात दुनिया या इनामात दुनिया को देखें तो उसमें भी उन्हें बेइंतहा अता फरमाया गया और बेमिस, और इसी तरह कैफियात के हिस्से में देखें, ईमानियात के हिस्से में देखें, कुर्ब इलाही के हिस्सों में देखें, तो कितनी ही बड़ी तादाद अल्लाह करीम के मुकर्रबीन की उनमें मबूस फरमाई अल्लाह करीम ने, तो अल्लाह जल्ला शानुहु ने उन्हें जब ये इरशाद फरमाया कि औलाद याकूब जो एहसानात मैंने तुम पर किए वो याद करो। और एक पहलू और हमें याद रखने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है कि कुरान करीम जब किसी पहलू पर इरशाद फरमाता है तो वो पहलू असूल हो जाता है। उससे मुराद ये नहीं है कि अक़वाम साबका की अगर किसी गलती की निशानदही की गई है, निशानदही फरमाई गई है, तो आने वाली जो अक़वाम है वो मौजू जो है उन पर इतलाक उसका नहीं होगा। अब जो एहसानात बनी इसराइल को अल्लाह करीम ने अता फरमाए, उसी निस्बत से बासियत मुसलमान हम अगर देखें तो अल्लाह जल्ला शानुहु ने तो हमें इमामुल अंबिया अता फरमाए, बेशत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें नवाजा, फिर अकामाते दीन में हमें अमूमी हिस्सों तक की ऐसी ऐसी सहूलियात अता फरमाई गई हैं जो अक़वाम साबका को न थी। आप इबादात के पहलू से लेकर मामलात के हिस्सों तक देख लें, अहकामात में किस हद तक हमें जो है वो रियायत अता फरमाई गई, सहूलत अता फरमाई गई, इबादत की जगह मुख्तस और उससे बाहर कहीं सजदा नहीं हो सकता, ये बेशत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत है कि कुल ज़मीन जो है उसे पाक करो और उस पर सजदा कर सकते हो, तो कुल ज़मीन को सजदागाह का सबब जो है वह बेशत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारी कौमों पर रोज़े जो हैं वो फ़र्ज़ रहे, उसके हुक्म में क्या क्या हिस्से हैं और कहाँ क्या बातें मिलती हैं, लेकिन हमें जो हुक्म दिया गया है हर तरह का खाना जो हलाल है, तो बुनियादी बात है। फिर औकात में, फिर ज़िंदगी में, फिर अज़दवाजी ज़िंदगी में जो सहूलतें दी गई, ये सारे वो पहलू हैं जो हमसे पहलों को नहीं। इब्तदान जो हुक्म रमज़ान का था उसमें साबका हिस्सा था कि जब तक कोई जाग रहा है वो खाना खा सकता है, लेकिन जब वो सो गया है, भले वो सहरी से पहले सो गया है, तो रोज़े की इब्तदा हो। तो ये सहूलत भी अल्लाह करीम ने हमें अता फरमाई कि इससे भी इस्तिस्ना अता फरमाया कि सुबह तक खा सकते हो, फिर रात तक का रोज़ा उसका हुक्म अता फरमाया। तो मज़द सामिन कराम, इसी हिस्से को जहाँ बनी इसराइल के हवाले से अल्लाह करीम इरशाद फरमा रहे हैं, इस असूल का इतलाक जब हम अपनी तरफ करेंगे तो यकीन माने कि अल्लाह करीम ने हमें बेशुमार अता फरमाया। अक़वाम साबका की उम्रें देखें और उन उम्रों में आमाल, फिर जजा सजा तो आमाल पर इंसार होगा ना, किस राह के इंतखाब, और उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रात जो शबे कदर अता फरमाई हजार महीने से बेहतर, हजार महीने से बेहतर। अब आप गौर फरमाएं कि जिसे जिंदगी के 10 रमजानुल मुबारक शबे कदर की बरकत की नस्बत से नसीब हो गए, तो वो जो सैकड़ों सालों की उम्र है उससे तो ये हिस्सा तजावज कर जाएगा, वो लगभग 1000 साल के करीब पौने 800 से ऊपर चला जाता। तो कितना, और इशा की नमाज बजमात अदा करना और फजर की नमाज बजमात अदा करना, ये वो हिस्सा है जो कायमुल लाइल में दाखिल हो जाता है कि सारी रात इसने इबादत की। तो कैसी कैसी रहते हैं अता फरमाएं, करम और एहसान फरमाए। कोई कपड़ा कहीं से वो ख़राब हो जाता, नापाक हो जाता, तो वो धुल कर साफ नहीं होता था। ये उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहूलत है कि वो धो कर साफ कर ले, पाक कर ले, वो पाक हो जाएगा। तो जो कुरान करीम उसूल बयान फरमा रहे हैं और जो एहसानात बनी इसराइल को अल्लाह करीम याद दिला रहे हैं, इसी नस्बत से, इसी बात को जब हम अपनी तरफ देखेंगे तो फिर हमें भी देखना होगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हमारा अंदाज शुक्रगुजारी का है, ये हम भी इसी राह को इख्तियार कर रहे हैं जो बनी इसराइल ने इख्तियार की होती। चूंकि जब ये इन्हें फरमाया गया ना भैया या फरहबून, तो यहाँ जो फरमाया गया ना कि मुझ से ही डरा करो, तो जब फरहबून पर आप बहस करेंगे तो इस ये उस किस्म का डर है जिस डर में भी एहतियात हो, मोहतात हो, इस डर में भी मोहतात हो। तो क्या हम अपने मामलात में मोहतात हैं, एहतियात है हमारे अमल में? क्योंकि कोई अमल, कोई सोच से लेकर कोई अमल, या तो वो दीन है या वो बेदीनी है। इसलिए कि अगर जायज है तो किसी न किसी दर्जे में दीन के हुक्म की पैरवी हो रही, और अगर नाजायज है तो किसी न किसी दर्जे में दीन से तजावज़ हो रहा है, और दोनों पहलुओं में एक हिस्से में अल्लाह करीम की बात जो है वो मानी जा रही है, इकरार किया जा रहा है और मानी जा रही है, दूसरे हिस्से में उसका इनकार अमली सूरत में हो रहा है, भले वो मान रहा है लेकिन तजावज़ जो कर रहा है, वो जिद कर रहा है, वो इनकार के ज़ुमरों में जा रहा है, मानते हुए नहीं मान रहा क्योंकि अमल उसके खिलाफ कर रहा है। तो बात जब खौफ खुदा की भी आएगी तो भी उसमें एक एहतियात है। हम दुनिया के खौफ देखते हैं, दुनिया के खौफ में हम किसी से खौफ ज़्यादा होते हुए भी उसे धोखा देने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ताल्लुक माल्ला में जो खौफ खुदा की बात आएगी, वो हजूरी जो उसके हजूर पेश होने में है, वो बातें, वो पहलू जो उसके हजूर जवाब दही का है, वो हर लम्हे सामने आ जाना चाहिए कि जहाँ जो मैं गलती कर रहा हूँ उसका जवाब मैंने उसको देना है। फिर ये जो जवाब दही का खौफ है कि ना, हमारा ईमान है कि अल्लाह करीम हर जगह हर लहजे मौजूद है, तो यानी जो मैंने गलती की, अब मैं यहाँ से आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, गुजारशात पेश कर रहा हूँ, इसमें अगर मैं कोई आमेजिश ज़ात की करता हूँ, कह कुछ रहा हूँ, मेरी नीयत कुछ होती है, तो आप तो सुन ही रहे हैं, शायद आपको सुनने में धोखा लग जाए, शायद आपको देखने में धोखा लग जाए, लेकिन उसकी ज़ात तो अलीम है, तो क्या मैं उसके रूबरू ये बात नहीं कर रहा? वो तो वो ज़ात है जो नया खाने तक मेरी एक एक सोच को जानता है, मैं न था वो तब से जानता। तो वो जो खौफ खुदा की कैफियत है उसमें भी वो नज़ाकत जो एहतराम की है, जो हदूद की है, जो अपनी हैसियत के जानने की है कि मैं हूं क्या, और दूसरी तरफ परवरदिगार आलम की ज़ात है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। तो वो असूल जो बयान फरमाए जा रहे हैं, जब उन्हें हम अपनी तरफ देखेंगे तो ये बारीकियां हमारे लिए भी उसी तरह ज़रूरी हैं जिस तरह किसी कौम के लिए ज़रूरी थी। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि जिस पर जितनी अता, चूँकि देखें अल्लाह करीम ने उन्हें कितनी रियायतें अता फरमाई, कितने एहसानात अता फरमाए, तो अल्लाह करीम उन्हें ये हिस्सा बयान फरमा रहे हैं कि देखो अपने आप को तो देखो कि तुम वो कौम जो ग़ुलाम थी, और तुम्हें कत्ल कर देना कहीं कोई किसी दर्जे की जेर बहस में ना आता था। गुलाम ऐसा गुलाम कि जिसे खाने को दे दो तो भी ठीक है, न दो तब भी ठीक है, सजा दे दो तब भी ठीक है, जिंदा रहने दो तब भी ठीक है, कत्ल कर दो तब भी ठीक है, बेटे को कत्ल कर दो, बेटी को खिदमत पर मामूर कर दो। कहाँ थे, क्या थे, और अल्लाह करीम ने तुम्हें क्या फजीलत अता फरमाई, तुम्हें क्या इनामात अता फरमाई, और तुम क्या कर। तो इसी पहलू को, हम क्या हैं, हमारी हैसियत क्या है, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होना ये शरफ अता फरमाया। तो इस शरफ में फिर जिसे ये शरफ बख्शा गया उसका किरदार क्या है, उसका अमल क्या है। हदीस शरीफ में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग भी अकवामे साबका के रास्ते पर कदम ब कदम चलोगे। तो साहबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये यहूद नसारा के रास्ते? तो आपने फरमाया और कौन। तो अगर हम अपने आप को देखें कि इन 15 सदियों में जिस मुसाफत पर, जिस सफर पर ये मुसाफिर है, वो क्या रास्ता है, कहाँ था ये मुश्ते गुबार, और क्या अता अल्लाह ने इसे फरमाया कि ये बारगाह एजदी में पहुँचने वाले बात, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कराम ने अर्ज की और बारगाह एजदी से उसका जवाब आया, कितनी बुलंदी अता फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनफ़से नफीस जिंदगी मुबारक बसर फरमाई। जिस रोज दीन इस्लाम की तकमील हुई और हजर विदा के मौके पर अलयौम अकमल, तो आया करीमा जो नाजल हुई तो सहाबा कराम ने बड़ी खुशी मनाई, बड़ी मुबारकबादें दी एक दूसरे को, अल्लाह करीम ने एहसान फरमाया कि हमारे लिए जो दीन इस्लाम है ये मुकम्मल हो गया है। तो सब ढूंढते ढूंढते ये ख्याल किया कि हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं वो कहीं नज़र नहीं आ रहे, तो मुतजस्सस हुए, ढूंढा तो आप एक खैमे में बैठे हजारों कज़ार रो रहे। अर्ज़ की कि हजरत आज तो खुशी का दिन है, अल्लाह करीम ने ये इनाम अता फरमाया कि हमारे लिए दीन मुकम्मल हो गया। तो आप रो रहे हैं, तो आपने फरमाया ये जगह इस काबिल नहीं है कि यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरोश। आप जिस फरीजे के लिए तशरीफ लाए हैं अगर वो मुकम्मल हो गया तो आप पर्दा फरमा जाएंगे। तो वही बात है कि आप जलवा फरोज रहे, आपने कुफार की सख्तियां बर्दाश्त की, दिन रात मेहनत फरमाई, जिंदगी भर मुजाहिदा फरमाया हर तरह और हर पहलू से, कोई ऐसी दुनिया में तकलीफ नहीं है जो आपकी जिंदगी मुबारक के गिर्द से न गुजरी हो। कितनी तकालीफ आपने बर्दाश्त, इस हक का मखलूक खुदा तक पहुंचाना, तो क्या इस हक के पहुंचाने के जो मुखातबीन हैं, इसमें आज हम मुसलमान जो बैठे हैं, जो बनी नौ इंसान बैठे हैं, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कुल औलाद इंसानियत बैठी, ये सारे शामिल हैं, और उस सारी अफरादी कुव्वत या अददी के हिस्सों से मैं अपनी ज़ात को अगर मैं अलग करके देखूं, मेरी है हासियत है आपकी ज़ात का मबूस होना, फिर एक एक हिस्से का जिंदगी मुबारक में इख्तियार करना, न सिर्फ इरशाद फरमाया अमली नमूना अता फरमाया। तो फिर मैं आज कहूं कि बार इला जो तूने बने इसराइल की बात किया ये तो दुरुस्त है, वो तो थे ही ऐसे, वो हैं ही ऐसे। तो मैं जो ये तिलावत का शरफ हासिल कर रहा हूं, जो कलाम ज़ाती पढ़ना मुझे नसीब हो रहा है, जो असूल बयान फरमाया जा रहा, मैं कहाँ कर रहा हूं। तो फरमाया वह आमिनु बिमा अनज़लतु मुसद्दिकन लिमा मअकुम, जो मैंने नाजल फरमाया इस पर ईमान लाओ कि वो जो तुम्हारे पास है उसकी तस्दीक करता है। वला तकूनु अव्वल काफिरिन बिह, और इसका इनकार करने वालों में पहले ना बनो। अब जो तौरात लेकर वो सवाल उठा रहे थे या पहलू उठा रहे थे या अपने इल्मी इस्तदाद का इजहार करते थे मखलूक में, तो इरशाद फरमाया जा रहा है कि इस पर ईमान लाओ जो कुछ मैंने नाज़िल फरमाया, यानी कुरान करीम पर। बेशक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। फरमाया वो जो तुम्हारे पास है उसकी तस्दीक करता है, अब जो अल्लाह करीम ने उन्हें अता फरमाया उसकी तस्दीक करता है दीन इस्लाम, तो तमाम जो आसमानी कुतब हैं सहीफे हैं उनकी तस्दीक फरमाता है, तमाम अम्बिया और रसूल के मानने का हुक्म अता फरमाता है, तस्दीक फरमाता है। अब उस तस्दीक में उन्होंने बेशत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माना हुआ है, और वो कहते हैं जो कुछ हमारे पास है ये हक है और कोई नहीं, और कुरान करीम फरमाता है कि कुरान करीम भी हक है और जो अल्लाह करीम ने पहले अहकामात नाजल फरमाए थे वो भी हक है, और जो हस्तियां मबूस फरमाई थी वो भी हक है। हमारे लिए ईमान की शरायत में कुतुब साबका और तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम पर ईमान लाना लाजम। तो फरमाया जो तुम्हारे पास है ये उसकी भी तस्दीक फरमा रहा है, और उस जिसकी तस्दीक फरमा रहा है उसमें शहादत मौजूद है बेशक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ईमान लाओ वो जो तुम्हारे पास है उसकी तस्दीक करता है। वला तकूनु अव्वला काफिरिन बिह, और उसका इनकार करने वालों में पहले ना बनो। यूं तो दावत हक मक्का मुकरमा में शुरू हुई, ये सूरह मुबारक मदनी है, यहाँ जहाँ बनी इसराइल को मुखातिब फरमाया जा रहा है ये मदनी जिंदगी मुबारक के हिस्से हैं, और यहाँ जब ये फरमाया गया है कि इसके इनकार करने वालों में पहले न बनो तो वजह सामी ने करा वो तो मुतलक काफिर थे। अब ये आसमानी किताब का मानना, ये मानने वालों में से इनकार कर रहे थे। फिर जब हवाला दिया गया है कि जो कुछ उनके पास है तो उस इल्म के को एक दलील के तौर पर भी दिया गया कि अल्लाह करीम ने तुम्हें ये इल्म अता फरमाया, तो तुम ये सारे के होते हुए फिर इनकार कर रहे। फिर एक और पहलू भी है, दूसरा पहलू भी है कि किसी गलती को कोई जो पहला इख्तियार करता है उसके बाद जहां तक जो वो गलती दोहराई जाती है उसका असर उस तक जाएगा जिसने इब्तिदा की। इसी तरह कोई बेहतर अमल इख्तियार करता है, कोई नेक अमल इख्तियार करता है, तो जहां तक वो दोहराया जाएगा जो जो उसको इख्तियार करेगा जहां उसे अजर और सवाब मिलेगा वो जिसके हिस्से में इब्तिदा आ रही है उसे भी अजर और सवाब उनके हिसाब से भी मिलता जाएगा। अपना तो मिलेगा, मखलूक खुदा जो बेहतर अमल करेगी उसका हिस्सा भी अल्लाह करें उसे अता फरमाए। तो फरमाया जा रहा है इस इनकार में पहले न बनो। वला तश्तरु बिआयाती समनन कलीला, और फरमाया और मेरी आयात को घटिया कीमत दुनिया के बदले मत बेचो, यानी जो कुछ तुम उस कलाम में जो अल्लाह करीम ने तुम्हें अता फरमाया उसमें आमेजश कर रहे हो। किस लिए आमेजश कर रहे हो? जो दारे दुनिया के फवायद हासिल करते हो, जो लालच करते हो, चूंकि बात रुपए पैसे ही की नहीं रहेगी, कुल दुनिया फिर जब इस तरह आखरत के मुकाबले में लेकर आओ तो वह हेच है, क्योंकि उसकी हैसियत ही कोई नहीं है, बात खत्म हो जाती है। तो फरमाया वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला, मेरी आयात को घटिया कीमत दुनिया के बदले मत बेचो। इसमें कि वो जो आने वाले की मर्जी के मुताबिक कलाम का मतलब तरतीब दे के उसे दे देना। आज कितने लोग ऐसे हैं या कि कई दफ़ा ये बात सुनने को मिलती है कि जी कुरान करीम मौजूद है, आदी से मुबारक मौजूद हैं, अरबी के अलफ बेजीम अगर कुछ आती हो तो आप खुद समझ सकते हैं। तो मौजूद सामीन कराम, जो ये हक हम तक पहुंचाने का सबब बने हैं उनका जो हिस्सा हम तक पहुंचा उसे तो हम मान रहे हैं, जो हस्तियां पहुंचाने का सबब बनी उनका इनकार कैसे कर सकते हो? उनका इनकार करोगे तो इस पहुंचने का हक होना तुम कैसे साबित कर सकोगे? तो अम्बिया अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ हक पहुंचाया बल्कि उसकी अमली सूरत जो है वो अपनी अकवाम को अता फरमाई। तो उसी अमली सूरत को लेकर नस्लन बादा नस्ल मखलूक खुदा तक हक पहुंचने का एक जरिया अल्लाह करीम ने बना, और इसी रब से इसी अंदाज से दीन इस्लाम हम तक पहुंचा, और यही अंदाज हमसे बाद में आने वालों को नसीब होगा। अब हम किस राह का इंतखाब करते हैं? क्या इस दीन के अमली हिस्से में, इसके समझने, इसके सीखने, इसके इख्तियार करने में दाखिल होते हैं? तो दो हिस्से, एक हिस्सा वो जो हम अमल इख्तियार कर रहे हैं वो अल्लाह की रजा है, दूसरा वो सदका जारिया जो वो अमल साले नसीब हो रहा है हमसे आगे मुंतकिल होता चला जाएगा। तो नबी करीम का फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बेहतरीन सदका जारिया औलाद है, कि साले औलाद जो है ये बेहतरीन सदका जारिया। तो ये एक ऐसा हिस्सा है जो नस्लन बादा नस्ल आगे मुंतकिल होता जाता है। तो फरमाया वइया फत्तकून, और सिर्फ मेरा तकवा इख्तियार करो, दुनिया के लालच से मना फरमाया, घटिया कीमत है, वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला, ये घटिया कीमत है, कम कीमत है, इसकी कोई हैसियत नहीं है, जिसके बदले तुम हक जो है उसमें आमेजिश कर रहे हो, जो गलती कर रहे हो। ऐसे भी सवाल मौला सामीन कराम देखे हैं, मैं तो आलम नहीं हूँ, कम इल्म आदमी हूँ, तो कई दफ़ा ये सवाल मैंने भी देखा है जी, कि जी ये जो तलाक का मसला है इसमें ये सूरत दरपेश आ गई है कि जी गुस्सा था बच्चे को और बस वो एक ही नशिस्त में उसने बोल, कोई राह बता दें ताकि हल इसमें से मिल जाए। तो मौज़े सामीन कराम, अल्लाह करीम ने जो हिस्से बयान फरमाए हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम फरमाए हैं, उसमें से जो कोई राह निकालेगा तो वो राह क्या होगी? उसी दी राह नहीं होगी, वो हक नहीं होगा। और जो राह निकाल कर दे रहा है, जिसे दीनी इल्म नसीब हुआ, दीन का इल्म हासिल करना जिसे नसीब हुआ, वो जो किसी ताल्लुक पर, किसी लालच पर, दौलत पर, जमीन पर, किसी शय के लालच में, खौफ से, जो हक से आने वाले या सवाल करने वाले के मतलब का, उसके जिस पसंद का वो जो उसका उसमें से वो इसे निकाल कर देगा, तो क्या वो दीन होगा? या क्या वो दीन का बेचना नहीं होगा? वैया या फत्तकून, और सिर्फ मेरा तकवा इख्तियार करो, नहीं करोगे तो किसके हुजूर पेश होना है? तुम मखलूक से खौफ खा रहे हो, अगर कोई पैसे का लालच कर रहा है तो वो अफलास से खौफ खा रहा है, कोई किसी के हैसियत से खौफ खा रहा है तो अपनी जान का खौफ खा रहा है। तो फिर हकीकी जो बात है वो क्या है? वैया या फत्तकून, तो वो जो मुत्तकी की हैसियत है, वो जो खौफ खुदा है, वो तो ताल्लुक माल्ला की हकीकत में है। अगर अमली सूरत मुख्तलिफ होगी तो ये खौफ हावी रहेंगे, लेकिन मुकाबिल देखो तो सही कि हक के मुकाबिल जो तुम जहालत कर रहे हो, जो ज्यादती कर रहे हो, जो तजावज कर रहे हो, इसकी हैसियत क्या है? इसकी तो कोई हैसियत नहीं है। इन आयात को, मेरी आयात को जो फरमाए, बे आयाती, मेरी आयात को, कलाम जाती है, और जिस इवजाने पर बेच रहे हो वो भी उसकी मखलूक है। आलम खल्क में क्या, कौन सी निशानदेही, किसी जगह भी कोई निशानदेही कर सकता है कि जो कुछ है वो उसकी मखलूक में? खालिक के हुक्म को मखलूक मखलूक में मखलूक के तहत बेच रही है, क्या ये अकलमंदी है भाई? लेकिन जब बंदा हक से इनकार करता है ना, तो वो माउफ हो जाता है। ये बदबख्ती है जो अंधा कर देती है, सुमन बुकमन, यही बात है कि वो न सुनते हैं न देखते हैं, फिर समझ नहीं सकता बंदा जो न देख रहा है न सुन रहा है। तो ये जो गुंगे बहरे हैं, ये बदामाली है, ये उस राह का चुनना है जिस राह के इंतखाब किया है उसी तरह के नताज आएंगे। वला तलबिसुल हक्का बिल बातिल व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून, और हक को झूठ से आमेज ना करो। अब जो शरी हुक्म है उसमें अल्फाज बताए जा रहे होते हैं कि तुम अपने अल्फाज को तब्दील करो, सवाल को तब्दील कर लो, फिर वो हुक्म सादर होगा। सवाल के तब्दील करने से और हुक्म के सादर उन तब्दील शुदा अल्फाज पर होने में क्या हकीकत बदल जाएगी? तो असल बात उस हकीकत की है, चाहे ये मामले अज़दवाजी जिंदगी क्यों, चाहे ये कारोबारी जिंदगी क्यों। अब जैसे सूद है, कितने एक नाम हम सूद को देकर अपने मुआशरे में इसको आम किए बैठे, कैसे कैसे नाम है, लेकिन क्या वो ये हकीकत बदल जाती है कि वो सूद नहीं है? क्या इस हकीकत का वो असर जो अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐलान जंग है, ये हकीकत उससे बदल जाएगी? क्या ये इस नाम का बदलना, रोजे माशर जब अपनी अपनी कब्रों से उठेंगे सूद खोर, तो जैसे मफूतुल हाल किसी को शैतान जिनात से मर जाए, जैसे वो चीख चला रहा होता है, क्या ये उस सूरत को बदल देंगे? ये अल्फाज कतन नहीं बदलेंगे, क्योंकि होगा वो जो अल्लाह करीम इरशाद फरमा रहे हैं। तो फरमाया वला तलबसुल हक्का बिल बातिल, और हक को झूठ से आमेज ना करो, ना मिलाओ, क्योंकि हक हक है और बातिल जो है वो बातिल है और बातिल रहेगा, हक में वो शामिल नहीं हो सकता। और अगर हक व बातिल को मुकाबिल करोगे तो फिर बातिल मिट जाएगा, फिर हैसियत हक की होगी। आप कभी गौर कीजिएगा कि अंधेरे और रोशनी का मवाजना किया जाए ना, तो बड़ा होता है कि जी अंधेरा, लेकिन जहाँ रोशनी हो वहाँ अंधेरा कहाँ होता है? क्योंकि अंधेरा और रोशनी जब मुकाबिल आते हैं तो फिर अंधेरे का वजूद नहीं रहता। इसी तरह हक व बातिल की जो बहस है, हक का न होना बातिल है, जहां हक हो वहां बातिल रहता कौन नहीं, बातिल का वजूद कोई नहीं रहता। और फरमाया व तक्तुमुल हक्का, और हक को मत छुपाओ, आमेजश भी ना करो और उसे छुपाओ भी नहीं। एक दूसरी जगह आता है कि है मेरे हबीब सल्लम ये आपको ऐसे पहचानते हैं जैसे अपनी औलाद को पहचानते। अब माँ बाप का अपनी औलाद को पहचानना, उसमें किस निशानी की जरूरी है? किसी निशानी की जरूरत नहीं है। खूब पहचान होती है, अपने वजूद का हिस्सा है औलाद, उसकी महक वालदैन पहचानते हैं। तो इस दर्जे की निशानियां इनके पास मौजूद हैं, जैसे कोई अपनी औलाद को पहचानता हो। इनकार किस लिए कर रहे हैं? जिद और अनाद से कर रहे हैं, अपने मनवाने को कर रहे हैं। ये जो बनी इसराइल और बनी इस्माइल की जो बरादर कौमें हैं, इसमें भी एक एतराज ये भी था कि ये आखिरी जो नबी हैं उन्हें बनी इसराइल में मबूस होना चाहिए था, बनी इस्माइल में क्यों वो मबूस हुए? ये भी एक एतराज में, ये भी एतराज था। तो जब भी कोई बंदा हक का इनकार करता है ना, कहीं किसी जगह किसी दर्जे के हक का इनकार, उसमें उसकी अनाजाती होती है, वो इनकार अपनी जात को चाहता है कि वो इनकार करे, क्योंकि उसमें को उसकी जाती मनफत होती है, उसमें किसी न किसी पहलू से उसकी जात का दखल होता है। अब ये जो झूठ और खराबी को हक जाहिर कर रहे हैं और दुनिया की दौलत में बेच रहे हैं, क्या है? जाती मनफत है। और ये जो हक को छुपा रहे हैं, ये चाहते हैं कि जो हम जानते हैं वो दूसरा ना जाने, कहीं सुरखरू होना है तो हम हों, ये सुरखरू ना हो। और अगर हक सबको मालूम होगा तो फिर पीर साहब और मुरीद साहब एक ही हैसियत में सफारा होंगे, फिर वो जो जो मोतबरी है दुनिया की वो नहीं रहेगी। तो यही बात है कि वो फरमाया व तक्तुमुल हक्का, और हक को मत छुपाओ। और इसके छुपाने में दो पहलू, एक वो जो जाती अनानियत है, दूसरा हक जब छुपाया जाता है या हक इख्तियार नहीं किया जाता तो मौजूद सामीन करम फिर फसाद पैदा होता है। हम अपने मुआशरों में देखें क्यों फसाद पैदा हुआ है। कहते हैं जुर्म बढ़ गया, मैं कहता हूँ जुर्म नहीं बढ़ा, ला कानूनीयत है। कानून का निफाज हो जुर्म रुक जाएगा, कानून का निफाज न होना जुर्म बढ़ जाएगा। इसी तरह जब हक हक को छुपाया जाए, हक को इख्तियार न किया जाए, हक फैलने का सबब न किया जाए, तो जहाँ जहाँ ना हक होगा वहाँ वहाँ फसाद होगा, वहाँ वहाँ बेहतरी नहीं होगी। तो आज हम अपने मुआशरे की सख्तियों को जब देखते हैं तो हर जिस बंदे से बात करो वो तौबा तौबा कर रहा होता है, लेकिन क्या इसकी तामीर में जो मेरे लिए मेरे अल्लाह का हुक्म है, जो मेरे लिए मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मैं उसे इख्तियार कर रहा हूँ? या मैं भी अपनी ज़रूरियात, अपनी मनफत, अपनी लालच, अपनी अना में इसी रवश में बह रहा हूँ, जो रवश चल रही है, जो खराबी हो रही है, मैं भी उसी राह का मुसाफिर हो रहा हूँ। वह अंतुम तालमून, और ये तुम जानते हो। अब ये इरशाद तो फरमाया जा रहा है बनी इसराइल को, जो तुम तौरात के हिस्से दुनिया के लिए बेच रहे हो, जो तुम छुपा रहे हो, जो खराबी तुम कर रहे हो, फरमाया वह अंतुम तालमून, और तुम जानते हो, तुम्हें मालूम है। तो मज़ा सामिन करम, ये नहीं हो सकता कि जो गलत कर रहा है उसे ये मालूम न हो कि मैं गलत कर रहा। मालूम होता है, हम अपनी गलतियों को जवाज देते हैं, और गलती का गलती मान लेना एक मुस्बत रुख देता है, लेकिन गलती का जवाज देना ये वापसी का दरवाजा ही बंद कर देता है कि बंदा पलट नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि वो गलती को गलती मान ही नहीं रहा। अगर गलती को गलती मानेगा तो आज न सही, शायद कल तौबा नसीब हो जाए, एहसास से नदामत हावी हो जाए। अब जो गलती करके उसके दुरुस्त होने का जवाब दे रहा है, वो तो फिर अपना हुक्म नाफज कर रहा है, वो फिर अल्लाह के मुकाबले आ गया। तो जब वो मुकाबले आ गया तो फिर अपनी वजीयत के मुताबिक ही रहेगा। तो अगला हिस्सा जो बयान फरमाया गया है, वकीम सलात वकीन, वो हिस्से अता फरमाए गए जिनसे इन कैफियत से, ये जो खराबी की कैफियत है, इनसे बचा जा सकता है और ज़िंदगी जो है वो मुस्बत राह पर गामजन हो सकती है। वो क्या क्या है? और नमाज कायम करो, सलात कायम करो, आतु ज़कात, और ज़कात दो, वरकऊ मर्राकीन, और रकू करने वालों के साथ रकू करो। नमाज फ़राइज़ में सबसे बड़ा हुक्म है। नमाज का ना अदा करना, इससे मुतल्लिक बहुत बड़ी वईद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बेनमाजी हम में से नहीं है। अब जिसकी निस्बत आप से ना रही, उसका दीन में क्या मकाम रहा, बारगाहे इज्दी में क्या जगह होगी? तो बड़ी बातें सारी खुल जाती हैं, बात समझ आ जाती है। फिर नमाज से मुतल्लिक कुरान करीम फरमाता है बुराई और बेहयाई से रोक देती है। बुराई और बेहयाई इंसानी मुआशरों में तकरीब का बहुत बड़ा अंसर है। ये आज हमारे मुआशरे में क्यों बेहयाई फैलाई जा रही है? हम बेहयाई की जो बदसूरती है उसे नहीं समझ पा रहे, लेकिन हक के खिलाफ चलने वाले ये समझते हैं कि इस उम्मत को भी हयाई में डाल दो, ये हमारा तो क्या, ये अपने जोगे नहीं रहेंगे, हमारे इन्होंने क्या करना है? तो तहफ्फुज कोई क्या करेगा जब तक अपनी टांगों पर खड़ा नहीं होगा, तो वो तो खुद गिर जाएगा। तो नमाज फरमाया, ये जो आमेजश दीन और दुनिया की हो रही है जहां भी फरमाया, क्या करो? अकीमुस्सलाह, और नमाज कायम करो। अब नमाज के कायम करने में हम जब तर्जमा लेते हैं, अमूमी लेते हैं, तो हमारा तर्जमा था कि नमाज का पढ़ना, बेशक इसके हुक्म के तहत आता है, लेकिन कायम सलात में वो बारीकियां जो औकात से लेकर जमात तक, तहारत से लेकर नमाज के एक एक रुकन के उसके हुक्म के मुताबिक अदा करने तक, एक एक पहलू इस हुक्म इस बात के तहत आ जाता है। फिर क्या में सलाम है, जब आप इसको इसकी बारीकियों में जाएंगे, इसके मकाम की तरफ जाएंगे, तो फिर समझ आएगी कि ذاتی طور پر نماز کا پڑھنا اور باجماعت نماز کا پڑھنا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ باجماعت نماز کا فرق انفرادی نماز سے 27 گنا زیادہ ہے. اور سیرت پاک کا مطالعہ کریں تو ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو نابینا تھے, ان کے لیے یہ نہیں فرمان ملتا کہ تمہیں فرصت ہے تھی کہ تم گھر ہی نماز پڑھو. وہ بھی جستجو فرماتے تھے, مسجد نبوی میں تشریف لاتے تھے, باجماعت نماز ادا فرماتے تھے. تو یہ جو نماز کا ادا فرمانا, یہ ہماری وہ ضرورت ہے کہ ہمیں اس قابل کرتا ہے کہ تعلق ماللہ نصیب ہو. شرف ملاقات ہے بندے مومن کے لیے نماز اپنے اللہ سے, شرف ہم کلامی ہے. وہ فرمایا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نمازی کے سامنے سے نہ گزرو. کیوں نہ گزرو؟ وہ اپنے اللہ سے باتیں کر رہا ہے, اپنے اللہ سے ہم کلام. وہ جسے اپنی جیسی مخلوق بلانا پسند نہیں کرتی, پروردگار عالم نے رب العالمین اسے 5 مرتبہ کتنی بار اپنے حضور سر بسجود ہونا عطا فرما رہا ہے, کتنا شرف عطا فرما رہے ہم کلامی کا. اب قیام صلات کو ہم دیکھو تو وہ جو نماز کی تیاری ہے, وہ جو شوق ہے وضو کا کرنا, کیا ہماری اس اچھل کود میں کیوں ہے؟ ہم وضو کرنے جاتے ہیں تو کپڑوں سے لے کر جس جگہ وضو کیتے ہیں در و دیوار جو ہے وہ پانی پانی ہو رہا ہوتا ہے, اور کوئی معلوم نہیں کہ میری کوئی جگہ خشک رہ گئی ہو. وہ جو شوق ہے نماز کے لیے وضو تک پہنچے. اب اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہماری مصروفیات ایسی ہیں کہ ہماری نماز کی ادائیگی آخر وقت میں جا ہوتی ہے, ہبڑ دبڑ میں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ طریقہ درست نہیں ہے. اول وقت کا پڑھنا, پورے احترام سے پڑھنا, پوری لحاظ سے پڑھنا, اس کے ایک ایک حکم کا لحاظ رکھتے ہوئے پڑھنا. حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قیام صلاح پر جب بحث فرماتے ہیں نا, تو آپ لکھتے ہیں, بیان فرماتے تھے آپ, کہ بندے مومن کی قیام صلاح کا درجہ یہ ہے کہ وہ جہاں سے گزرے مخلوق نمازی ہوتی جائے, اتنا اس نمازی کے ساتھ جو ہے کیفیات ہونی چاہیے, اتنا اس کے ساتھ تائید باری اسے نصیب ہونی چاہیے اس کے رکوع سجود کی, کہ وہ جہاں سے گزرے لوگ نمازی ہوتے ہیں. ہم جس دن کسی کام سے جاتے ہیں ہماری نماز قضا ہو جاتی ہے. تو قیام اللہ جو ہے صلاح, اس کے معنوں میں کیا کیا باتیں آئیں. اب مسجد کا احترام ہے. میں پچھلی دفعہ بیٹھا یہاں سے اٹھا جمعے کے بعد, تو میں بزرگوں سے کسی سے میں نے حال پوچھا کہ آپ خیریت سے ہیں؟ آپ یقین مانیں مجھے کھٹکا لگا. میں نے کہا میں کیسی روانی سے میں نے ان کا حال پوچھ لیا کہ آپ کا کیا حال ہے, آپ ٹھیک ہیں؟ تو یہ تو احترام جو مسجد کا ہے اس کے خلاف ہے. جی جو ہم حال چال پوچھتے ہیں نا, مثلا ہاں بھائی کیا حال ہے, بڑے دنوں بعد دیکھا, آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں, احترام مسجد کے یہ خلاف ہے. کبھی غور کیا ہم نے کہ جس خانہ خدا میں میں سر بسجود ہوں اس کا احترام کہاں ہے؟ پھر جو نماز کے ارکان ہیں وہ کیسے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں تو کیا وہ سجدہ ہے؟ تو یہ جو رکوع و سجود کی ترتیب اور اصول ہے, جتنا جتنا اس سے کو پیچھے ہٹتا آئے گا اتنی کمزوری ہوگی عبادت کی ادائیگی میں. تو یہ جو مسائل میں ہم گھرے ہوئے ہیں, بے دینی میں گھرے ہوئے ہیں کہ دین ہے اور بے دینی پھیلی ہوئی, یہ کون سی بات؟ کتب سابقہ میں آمیزش کی گئی, کلام ذاتی میں ہو نہیں سکتی. کتب سابقہ کی حفاظت مخلوق کے پاس تھی, کلام ذاتی قرآن کریم جو ہے, چونکہ کلام ذاتی تو وہ بھی اللہ کے کلام, حفاظت کا ذمہ مخلوق کے پاس, جو جو مخلوق میں کمزوری پیدا ہوئی جو جو تحریف ہوئی. اور یہ جو قرآن کریم اللہ کریم نے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما, اس میں آمیزش ہو نہیں سکتی. کیوں؟ اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے. ہم جیسے خطا کاروں پر ہوتا تو جانے کب کی تحریف ہو گیا تھی. تو اس نے اپنے ذمہ لیا. تو یہ تھوڑا کرم, تھوڑا احسان, عین حق کا موجود ہونا. اور حق کا موجود ہونا پھر معاشرے میں نہ ہونا دعوے مسلمانی اور دعوے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کیا ماجرا ہے پھر؟ کیا مطلب ہے کہ ہمیں ضرورت ہے اپنے آپ کو دیکھنے کی. یہ جو روش چل رہی ہے, دنیا کی روش کو دین کی روش اور حکم کے تحت لانا ہے تو دنیا بھی سہولت ہوگی. یہ جو سمجھ لیا جاتا ہے نا کہ دین پر عمل کرنے سے شاید دنیا اجڑ جائے گی, یہ نہیں بات. یا دین پر عمل پیرا ہونا سے مراد کہ تارے کو دنیا ہو دینا, دنیا چھوڑ دو. بھائی دنیا امتحان گاہ ہے, جو امتحان گاہ سے اٹھ کر باہر بٹھا دو اس کا امتحان گاہ ہو. اس میں بیٹھ کر اس کے مطابق نہیں چلنا, مطابق اس کے چلنا جو اللہ نے پسند فرمایا, تو یہی تو امتحان ہے. اور تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, اقوام عالم کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, حق کا نفاذ جہاں جہاں ہوا وہاں کے معاشروں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں. دکھ کی تو بات یہ ہے کہ ہماری تاریخ بھی وہ لکھ رہے ہیں جن کا ہم سے تعلق نہیں. ہم کیا اپنے اجداد کو جانیں؟ آج ہم اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے جو کچھ ترتیب دے رہے ہیں, یہ بھی اغیار کا ترتیب دیا ہوا ہے. مسخ شدہ تاریخ, ہماری زندگی بے عمل. ہم بتائیں نا پھر کیا نتائج نکلیں گے؟ یہی نتائج نکلیں گے جو ہم وہ کہتے ہیں. اب ماہ مبارک ربیع الاول ہے, اظہار محبت ہے, کچھ قلیل وقت گزرا محرم الحرام کا. اب ماہ مبارک ربیع الاول وہاں اظہار خانوادہ رسول سے محبت کا, یہاں عقیدت و احترام خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے. کیا ہم دیکھتے نہیں رواجات کی نظر کر دیا ہے؟ کتنا بڑا جلوس نکالا, کتنا بڑا جلسہ کیا, حتیٰ کتنا بڑا کیک کاٹا. ہمیں ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ رمضان المبارک ہے, سر پر ٹوپی ہونی چاہیے, بڑے احترام سے نماز پڑھنے. غیر نماز رمضان میں کیا فرضیت نماز ختم ہو گئی؟ نہیں فرض رہی. یہ مواقع, یہ دن, یہ ماہ و سال, یہ محبتیں, یہ عشق, یا دھیانی ہو سکتے ہیں, دستک ہو سکتے ہیں. اب فرض کرو ماہ مبارک ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جو محبت ہے, جو عشق ہے. اس موضوع کو لو, بڑا نازک موضوع ہے. میں اس موضوع پر کو زیر بحث نہیں لوں گا, اپنی ذات کو زیر بحث لاؤں گا. اس ماہ مبارک میں ولادت باسعادت ہے. اس موضوع پر انشاءاللہ بات تو غالباً اتوار کو جو ہمارا پروگرام ہے اس میں انشاءاللہ اس موضوع پر بات ہوگی. لیکن نقطہ جو آپ سے عرض کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا وہ یہ ہے کہ امتی کی محبت اپنے نبی سے, کیا وہ ایک مہینے میں قید کر سکتے ہو؟ یا اس کا جواب سانس کے ٹوٹنے تک دینا ہے؟ جب تک سانس میں سانس ہے اس امتحان گاہ میں ہے, یا اس امتحان گاہ میں سے صرف ایک مہینے کا سوال ہوگا کہ کیا اس میں تم نے اتباع اختیار کیا یا نہیں؟ میاں ٹوٹتی سانسوں تک امتحان ہے, ٹوٹتی سانسوں تک نفس کا بھی شور ہے, شیطان کی بھی وساوس ہیں, گرد و پیش کے حالات کی بھی جو ہیں اثرات ہیں وہ. پھر ہم اپنی عبادت کے پہلوؤں کو بھی رواجات میں لے جائیں اور دکھ ہوتا ہے ان موضوعات کو لے کر جو بحث ہو رہی ہوتی ہے, دکھ. اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے, ہمیں حقیقی محبت عطا فرمائے, बाशियत उम्मती जो जो ज़ाहिर हो हमारे आमाल तक। अल्लाह करीम मेरा और आपका हामी व नासिर व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।